يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. موضوع گفتگو روزے کے احکام، اور اس وقت جو ہماری گفتگو ہے اس کا اصل عنوان ہے مبتلات صوم، یعنی روزے کو باطل کرنے والی چیزیں. پہلے نمبر پہ ہم نے کھانے پینے کا ذکر کیا، اور اس ہماری گفتگو کا عنوان ہے جماع، یعنی انٹر کورس. اب اس جانب توجہ رہے کہ بہت سارے موضوعات نہ مجالس میں ڈسکس ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر مختلف عمر کے افراد بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ان کی تعلیم اور تربیت کے عنوان سے مناسب نہیں. اسی طریقے سے ہر سیمینار میں یا ہر درس میں بھی ہر موضوع کو ڈسکس نہیں کیا جا سکتا. وجہ کیا ہے کہ مختلف عمر کے مختلف افراد اور مختلف سمجھ کے افراد ہوتے ہیں. لہذا خود ہماری روش یہ ہے کہ کوشش یہ کی جائے کہ ہمیشہ مسائل کو جب ڈسکس کیا جائے تو ان افراد کے سامنے ڈسکس کیا جائے کہ ان افراد کے لیے ان مسائل کا ڈسکس کیا جانا ان کے لیے کسی بھی اعتبار سے ضرر رسانہ ہو. مثال کے طور پہ بچوں کے سامنے بڑوں کے مسائل کو ڈسکس نہ کیا جائے، اسی طریقے سے جب بالغ لڑکوں کے مسائل ہوں تو وہ 12-13-14 سال، 15-16-17 سال تک کی لڑکیوں کے سامنے ڈسکس نہ ہوں، لیکن بالغ لڑکوں کے مسائل اگر کوئی ماں سنے تو کوئی حرج نہیں، بلکہ بہتر ہے تاکہ اس کی توجہ ہو. باپ سنے تو کوئی حرج نہیں. البتہ حرج نہیں سے مراد اگر کوئی سن لے تو حرام نہیں ہے، لیکن اگر ایک چھوٹا بچہ ازدواجی مسائل سنے تو وہ اس کے لیے اس اعتبار سے مناسب نہیں کہ اسے ان موضوعات کی فی الحال ضرورت نہیں. اسی طریقے سے بعض ازدواجی موضوعات خصوصاً رپورٹس وغیرہ کے اس کے ذہن پر برا اثر بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن وہی موضوع اگر ایسی لڑکی اور لڑکا سنے کہ جس کو ضرورت ہے ان مسائل کی تو وہ اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے. لہذا ان لیکچرز میں جو ہماری روش ہوگی انشاءاللہ، اگر خداوند تبارک و تعالی نے توفیق دی کہ جو مسئلہ جس کے لیے ہے اسے لکھ دیا جائے. اب مثال کے طور پہ ایک 12 سال کے لڑکے یا لڑکی کو جب مبتلات صوم بتائے جائیں تو انہیں کھانے کا بتایا جائے کہ کھانے پینے سے روزہ باطل ہوتا ہے، اور مثال کے طور پہ سوئمنگ کا مسئلہ بتایا جائے، اور اسی طریقے سے ان موضوعات کو ان کے سامنے ڈسکس کیا جائے کہ جو ان کی عمر سے مطابقت رکھتے ہیں. اب ممکن ہے کوئی کہے کہ اگر وہ جان لیں تو کیا برائی ہے، تو کہا جائے گا جان لیں تو کوئی برائی نہیں ہے، اور ہم بھی حرام نہیں کہہ رہے، بلکہ ممکن ہے کہ وہ موضوعات اس کی ذہنی سطح سے بلند ہوں اور وہ اسلامی تربیت کے بجائے اس کو کسی شیطانی راہ پر لے جائیں. لہذا دوسرے مرحلے میں جس چیز کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ ہے جماع، یعنی انٹر کورس، اور اس گفتگو کا تعلق بچوں یا بچیوں سے نہیں ہے. اسے مرد بھی سن سکتے ہیں، خواتین بھی سن سکتی ہیں، البتہ وہ کہ جن کی شادیاں ہو گئی ہیں یا جو شادی کے قابل ہیں اور جو ان مسائل سے آشنا ہیں. اب اگر کوئی فیملی والے بیٹھ کے اس مسئلے کو سننا چاہیں تو خود ہماری خواہش یہی ہوگی، اور اسی وجہ سے جو ارادہ ہے ہمارا وہ یہی ہے کہ ویب سائٹ پہ لکھ دیا جائے اس لیکچر کے ساتھ کہ یہ بالغ مرد اور عورتوں کے لیے ہے. ताकि इसलाह के बजाय इन्हराफ ना हो। हमारे माशरे में बाज़ दफ़ा बाज़ बातें इसलाह के लिए होती हैं, यानी होती हैं इसलिए कि बेहतरी हो, लेकिन उसके नताइज बुरे निकलते हैं। और इसकी मिसाल हम ये देते हैं कि जो फ़ारसी में मशहूर है कि एक शख्स अपने दोस्त की भवों को सही करने चला और आँखें फोड़ दी, यानी प्रॉब्लम था किसी की भवों में और ये चले भवें सही करने लेकिन आँखें ख़राब कर दी। यही होगा जब हम किसी बच्चे को दीन सिखाने चलें और 10-11 साल के बच्चे को जमा के मसाइल बताएं, हैस के मसाइल बताएं, या 10-11 साल की लड़की को जनाबत के मसाइल सिखाएं, इंटरकोर्स के मसाइल सिखाएं, और आखिर में ये कहें कि ये तो दीन का मौजू है। तो दीन के मौजू तो हैं, लेकिन दीन का मौजू हर उम्र के एतबार से अलग अलग है, बच्चों के लिए अलग और बड़ों के लिए अलग। इस जानिब हमने पहले भी तवज्जो दिलाई और इंशाअल्लाह तवज्जो दिलाते रहेंगे। लिहाजा किसी को भी अगर ये लेक्चर्स हमारे इसी सूरत में मिलें तो, और उस पर ना लिखा हो कि ये फ़क़त बालिगों के लिए हैं, तो ये गलती हमारी जानिब से नहीं है, बल्कि ये उस शख्स की जानिब से है कि जो आपको बग़ैर लिखे हुए सीडी या कैसेट्स या ये कि अपनी वेबसाइट पर डाले और वहाँ पर मेंशन ना करे। बस रोज़े को बातिल करने वाली दूसरी चीज़ है जमा यानी इंटरकोर्स। अब यहाँ पर बहुत वाज़े सी बात हो जाए कि इंटरकोर्स से रोज़ा बातिल हो जाता है। इंटरकोर्स क्या चीज़ है? एक मर्द और औरत के जिंसी ताल्लुक को कहा जाता है इंटरकोर्स। अब अगर कोई मर्द अपने उज्व तनासुल को दाखिल करे, चाहे किसी औरत के अगले हिस्से में या पिछले हिस्से में, या माज़ अल्लाह किसी और ऐसे फ़र्द के कि जिसमें ये काम करना हराम हो, मिसाल के तौर पे माज़ अल्लाह किसी मर्द के साथ ये काम करे, या माज़ अल्लाह किसी हैवान के साथ ये काम करे, तो इसका रोज़ा बातिल हो जाएगा। किस मकदार में? अगर ये मुकम्मल तरीके से इंटरकोर्स हो गया तो इसका रोज़ा बातिल हो जाएगा। और कम से कम मकदार के जो ख़तने की जगह है, अगर वो दाखिल हो गई इरादे और इख्तियार से, तो इसका रोज़ा बातिल हो जाएगा। इरादे और इख्तियार से क्या माना? अगर कोई ज़बरदस्ती इस काम को अंजाम दे, मजबूर करे कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा ये काम करो, तो उस सूरत में इसका रोज़ा बातिल नहीं होगा। लेकिन अगर ये अपने इरादे और इख्तियार से करें, अब फ़र्ज़ करें कि एक शख्स अपने इरादे और इख्तियार से करता है और खतने गा तक या इससे ज़्यादा इसका उज्व तनासुल दाखिल हो जाता है, तो इसका रोज़ा बातिल हो जाए। अगर किसी की खतने का नहीं है, फ़र्ज़ करें कटी हुई है, तो मुख्तसर सा भी हिस्सा अगर दाखिल हो गया तो इसका रोज़ा बातिल हो जाए। अब मुमकिन है कोई सवाल करे कि इसकी मनी खारिज हो या ना हो, तो जवाब यह है कि इसकी मनी खारिज हो या मनी खारिज ना हो, इसका रोज़ा बातिल हो जाएगा। इन मौजूआत को वाज़े डिस्कस करने का हदफ यह है कि ये मौजूआत ना मजालिस में बयान हो सकते हैं, ना ही आम दरसों में और सेमिनार में बयान हो सकते हैं। और फिर इस जानिब तवज्जो दिलाएं कि सब वही मसाइल हैं कि जिनका दारोमदार कुरान पर है और तालीमात मोहम्मद व आले मोहम्मद पर है। इन मसाइल को कुरान ने भी बयान किया और अहादीस की सूरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी आइम्मा अलैहिस्सलाम ने भी बयान किया। और हदफ बयान करने का यही है कि ये अल्लाह सुबहानहू व तआला का कानून है और इसको बयान करना ज़रूरी है। किसी को मुमकिन है इसमें शर्म महसूस हो, अलबत्ता इसी मौजू पर और गुफ्तगू करें, वो ये कि आम तौर पर दीनी मसाइल में शर्म वो लोग महसूस करते हैं कि जिनके घरों में उरियानियत भी है, फहाशियत भी है, गंदे चैनल्स भी चल रहे हैं, उनको वहाँ शर्म नहीं आती। लेकिन जब भी किसी जगह पर इन मौजूआत को डिस्कस किया जाए तो उनको कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही शर्म आ जाती है। अलबत्ता एहतियात हर एतबार से बेहतर है कि जिसकी जानिब हमने पहले भी तवज्जो दे रही। अगर कोई शख्स शक करे कि खतनेगाह से ज़्यादा उज्व तनासुल दाखिल हुआ या नहीं, तो उसका रोज़ा बातिल नहीं होगा। इसी तरीके से अगर किसी को मजबूर किया जाए तो उसका रोज़ा बातिल नहीं होगा। इसी तरीके से अगर कोई भूल के इंटरकोर्स कर ले पूरा, तो भी उसका रोज़ा बातिल नहीं होगा। लेकिन अभी दुखूल हो ही रहा था, इसको याद हो आ जाए कि मेरा रोज़ा है, तो इस पर वाजिब है कि फौरन इस अमल को छोड़े और तर्क करे। अब फ़र्ज़ करें कि इस दौरान इसको इतनी शहवत हो चुकी है कि इसकी मनी खारिज हो जाए, तो यहां पे कहा जाएगा कि जैसे ही इसको याद आया ये अपना उज्व तनासुल बाहर निकाले। अब अगर इसकी मनी खारिज हो जाए क्योंकि वो इसके इरादे इख्तियार में नहीं है और खुद ब खुद खारिज हो गई तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर इसने बाहर निकालने के बाद जानबूझ के खुद खारिज की और ये कहा जाए कि इसने बाहर तो निकाल लिया था लेकिन इसने खुद मनी खारिज की है तो इसका रोज़ा बातिल हो जाएगा। लेकिन अगर बाहर निकालने के बाद इतनी ज़्यादा शहवत थी कि खुद ब खुद वो खारिज हो गई तो यहाँ पर एक सवाल और ये पैदा हो सकता है कि उसका रोकना वाजिब है। तो जवाब ये है कि अगर वो खुद ब खुद खारिज हो रही है तो उसका रोज़ा भी बातिल नहीं है, और अगर वो खारिज हो रही है तो उसका रोकना भी वाजिब नहीं है, बल्कि अगर रोकने से नुकसान होता है तो रोकना जायज़ भी नहीं है। खुदावंद तबारक व तआला से दुआ है कि बहक़ मोहम्मद इम्वाल मोहम्मद हमें अपनी तालीमात और तालीमात रसूलुल्लाह और अहले बैत अलैहिम सलाम को समझने और फिर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।